जय धवला पुस्तक 11वीं लेक्चर नंबर 7।
ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य।
ओम नमः
सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वच्चायाणं नमो लोए सौवसाऊनं वेदगवेदगवेदगं अवेदगं वेदगं तसंसिद्धम् सिद्धं प्रणमीय शिरसा गोक्षं वेदगमहायारम।
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पौर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश्वर आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 11वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 57 पर आ गए। 57 जघन्य अनुभाग उदीर्ण के स्वामित्व का अधिकार अपना चल रहा है। 54 पृष्ठ से अपनी बात शुरू हुई थी, तो मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है पूछा था। हाँ, तो जो मिथ्यात्व गुणस्थान में से संयम के साथ, यानी संयम और सम्यक्त्व एक साथ प्राप्त करता है, पहले से सातवें गुणस्थान में जाने वाले के, ये तो जघन्य अनुभाग उदीर्णा होती है। कब? अंतिम समय। देखो, कहीं लिखते हैं आवली प्लस एक समय और कहीं लिखते हैं अंतिम समय, ऐसा है ना यहाँ लिखा ना। अंतिम समय वर्ती, क्योंकि जहाँ आवली प्लस एक समय कहा जाता है वहां वो उच्चिष्ट आवली वाली बात होती है, और यहाँ पर द्वितीय स्थिति में पड़े हैं नीचे, सत्ता में से नष्ट नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ अंतिम समय तक उदय है तो उसको ले लेना। सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, तो यहाँ पर बात बताई, दर्शन मोह की क्षपणा संपन्न नहीं हुई, वहां मेरे ख्याल से वो अनु समय अपवर्तन होता था इसलिए उसके अंत समय तक ले लिया, और यहाँ पर एक आवली और एक समय शेष रहता है वो लिया। सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा दर्शन मोह की क्षपणा के काल में, अभी क्षपणा पूरी नहीं हुई है, कृतकृत्य वेदक में आवली प्लस एक समय चल रहा है बाकी है उसके होती है। हाँ, हमने चार मान लिया है।
प्लस पांच,
यानी जो हमने पहले 16 का हिसाब लगाया था, 16 में से तो उदीर्णा नहीं होगी, 17वें वाले की उदीर्णा होकर वो उदय में आएगा, उसको उदीर्णा कहेंगे। जगन नियुक्ता संख्यात वाली आवली है
प्लस वन।
सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, तभी तीसरे गुणस्थान में से जो चौथे में जाने वाले उसके अभिमुख है, उसको सर्व विशुद्ध अंतिम समय वर्ती लिया। अनंतानुबंधियों की जघन्य कहाँ होती है, जैसे मिथ्यात्व का देखा है, मिथ्यात्व में से संयम और संयम समय प्राप्त करने वाला। अप्रत्याख्यानावरण की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, तो जो चौथे गुणस्थान वाला जो असंयत समय दृष्टि, वो संयम के जब अभिमुख है तब उसके अंत समय में होता है, ये तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। अब प्रत्याख्यानावरण की बात यहाँ करेंगे। पेज नंबर है 57। पच्छक खान कसायस ಜಹನ್ನ ಅನುಭಾಗವು ಭಾಗ ಮುದೀರ್ಣ ಕಸ್ಸ ಹರ್ ಜಗ ಭಾಗ ಉದೀರ್ಣ ಪೂಛಾ ಹೈ ಯಾ ಭಾಗ ಉದೀರ್ಣ ಕಿಯಾ ಹೈ अनुभाग उदीर्णिया करे ना यहाँ मुंह लिखा है उन्होंने पता नहीं क्यों शायद होता होगा भाग मुदीर्णा होना है कि नहीं होना पता नहीं हाँ। भाग उदीर्णा ऐसा ही जहन अनुभाग उदीर्णा भागोदीर्णा भी लिखा है हाँ यहाँ हम नीचे आते हैं हिंदी में प्रत्याख्यानावरण कषाय की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है यह सूत्र सुगम है। संजमा ही मुह चरिम समय संजदा संजदस्य सर्व विशुद्धस्य संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती संहिता संयत के होती है। अब ये तो आसान है ना, यानी संयम को प्राप्त करने मिथ्यात्व की अनंतानुबंधी की जघन्य कहाँ होती है, तो संयम के अभिमुख वाला मिथ्या दृष्टि है वो अंतिम समय में करण लब्धि का अंतिम समय। उसके पश्चात अप्रत्याख्यान आवरण की कब होती है, तो संयम के अभिमुख सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती असंयत समय दृष्टि। प्रत्याख्यान आवरण की जघन्य कहाँ होती है, संयम के अभिमुख सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती संहिता संयत।
ये सर्व विशुद्ध लिखा है तो वहाँ पे भी वेरिएशन हो गए विशुद्धि के।
हाँ, अन्य अन्य विशुद्धि के साथ भी संयम प्राप्त करते हैं
क्योंकि
उसकी रेंज होती है,
समान परिणाम हो जाता है
भले हो जाए फिर भी ना ना नीचे भी अनिवृत्तिकरण में तो होते हैं अंतिम समय में, तो अंतिम समय में सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध है ना, वो अंतिम समय में सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध है ना, भले सबका समान है परंतु चौथे में जाने वाले का पांचवें में जाने वाले का और सातवें में जाने वाले का समान नहीं है, इसलिए सर्व विशुद्ध।
चौथे से जो सातवें में जाएगा
हाँ, उसके
उसके हाँ, समान
स्टार्टिंग में असमानता थी, अपूर्वकरण अधकरण में अपूर्वकरण में अनिवृत्तिकरण में आने पर वो समानता हो जाती। यहाँ पर विशेष गुणस्थान के परिहार द्वारा संहिता संयत के जो स्वामित्व का विधान किया है उसका कारण पहले के समान कहना चाहिए। कोह संजलन से जघन्य अनुभाग उदीर्णा कस्य, क्रोध संज्वलन की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। खवगस्य चरिम समय कोध वेदगस्य, अंतिम समयवर्ती क्रोध वेदक शपक के होती है। ये कंडीशन अनिवार्य है, क्रोध के उदय के साथ चढ़ना चाहिए। उदीर्णा उसी को कहेंगे जिसका उदय है, तो क्रोध वेदक शपक का अंतिम समय लेना ही। क्रोध के उदय से क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुआ जो क्षपक आठ कषायों का क्षय कर पुनः क्रम से अंतरकरण समाप्त कर, पहले में पहले आठ कषायों का क्षय किया जाता है फिर वो अंतरकरण किया जाता है, नपुसक वेद स्त्री वेद और छह नौ कषाय और पुरुष वेद का यथोक्त क्रम से नाश कर, यानी वो इसी ऑर्डर से वहाँ नाश होता है। पहले नपुसक वेद का क्षय होता है फिर स्त्री वेद का क्षय होता है, क्षय होता है यानी संक्रमण से नष्ट हो जाते हैं। अब यथायोग्य जिस वेद से चला हुआ उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। छह नौ कषार पुरुष वेद का यथोक्त क्रम से, यथाउक्त जैसे आगम में बताया है उस क्रम से नाश कर, तदनंतर अश्वकर्ण करण यानी जब मात्र अभी चार संज्वलन बाकी है तब अश्वकर्ण किया जाता है। उल्टा पुल्टा था पहले,
सीधा हो गया,
अभी सीधा क्रोधमान माया लोभ रूप से अश्वकर्ण जैसे टेपरिंग जिसको हम कहेंगे उस पद्धति से हो जाते हैं, यानी अनुभाग की जो रचना ऐसी हो जाती है। और कृष्टिकरण काल को बिताकर चारों ही कषायों में
तीन तीन बारह
संग्रह कृष्टिया होती है, तो कृष्टिकरण काल को बिताकर क्रोध की तीन संग्रह कृष्टियों का वेदन करता हुआ, शुरू में पहले कृष्टि का वेदक होगा, उसके बाद वो जो परमाणु है वो दूसरे कृष्टि रूप से यानी और अनुभवहीन हो जाएगा, उसका वेदक होगा, फिर तीसरे कृष्टि का वेदक होगा। तृतीय संग्रह कृष्टि वेदक की प्रथम स्थिति में अंतरकरण के बाद क्या हुआ है, द्वितीय स्थिति और प्रथम स्थिति बनी है, जिसका वेदक है प्रथम कृष्टि का वेदक है तो नीचे अंतर के नीचे प्रथम कृष्टि की रचना हुई, फिर उसके बाद द्वितीय कृष्टि यानी जो अनुभाग और घटाया था उसकी वहां रचना होती है, उसका उदय चलता है, फिर तीसरी कृष्टि। तो तृतीय संग्रह कृष्टि वेदक की प्रथम स्थिति में एक समय अधिक एक आवली मात्र काल के शेष रहने पर अंतिम समयवर्ती क्रोध वेदक हो गया। उसकी प्रथम स्थिति में कितने निषेक है तो आवली और एक समय, और क्रोध वेदक का यह अंतिम समय है यानी जो रिमेनिंग आवली है उसका वो वेदक नहीं होगा, उसी समय मान की प्रथम स्थिति की रचना हो जाएगी और मान का उदय चालू होगा और ये आवली प्रमाण निषेक एक एक करके संक्रमित होकर उदय में आएगा, एक एक करके वो मान रूप हो जाएगी। ये आवली प्रमाण जिसको उच्चिष्ठावली कहते हैं वो भी मान रूप हो जाएंगे, और जो अंतिम समय तक जो नया बंध हुआ था नवक समय प्रबद्ध वो भी और दो आवली तक उसका भी चलेगा। तो यहाँ क्रोध वेदक का ये अंतिम समय है तो उसी को वहां पर उदीर्णा कहेंगे। उसके क्रोध संज्वलन विषयक जघन्य अनुभाग उदीर्णा होगी, क्योंकि अधस्तन समस्त उदीर्णाओं से इस उदीर्णा का अनंत गुणाहीन पना देखा जाता है। अधस्तन है इसके नीचे, इस पॉइंट पर आया है क्षपक, उसके पहले अधस्तन है, उसके पहले पूर्व में यानी इतनी जो जघन्य उदीर्णा इससे पहले नहीं थी। मान संज्वलन से जघन्य अनुभाग उदीर्णा कस्य, मान संज्वलन की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। अब यही फॉर्मूला लगाना है। खवगस्य चरिम समय मान वेदगस्य, अंतिम समयवर्ती मान वेदक क्षपक के होती है। इस सूत्र के अर्थ का भी अनंतर अतिक्रांत हुए स्वामित्व विषयक सूत्र के समान, अनंतर यानी इससे जस्ट यानी अभी अभी पूर्व में, अनंतर का अर्थ दोनों तरफ होता है, अनंतर पूर्व है अनंतर पश्चात, तो अभी अभी अनंतर अतिक्रांत हुए यानी अभी जो बीत गया है सूत्र स्वामित्व विषयक सूत्र के समान यानी क्रोध के बारे में अभी अभी जो सूत्र बताया था उसके समान व्याख्यान करना चाहिए। इसके भी कृष्टि होगी और इसके भी अंतिम कृष्टि के वो मान वेदक का, हाँ अभी यहाँ ये हो सकता है कि उसका कौन से वेद से यानी कौन से कषाय के साथ चढ़े हुए के जगन में होगा, हाँ मान से ही चढ़ेगा तो नौ ही होगी, तो किसका अनुभव ज्यादा कम होगा मिनिमम कुछ बताया तो देखेंगे हम। यहाँ इतनी विशेषता है कि क्रोध और मान में से अन्यतर के उदय से क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए, हाँ दोनों को, क्योंकि क्रोध से चढ़ने वाला भी मान रूप तो हो ही जाता है, परंतु जो माया से चढ़ेगा उसका तो मान का उदय होगा ही नहीं क्षपक श्रेणी में, बिना उदय होते ही वो नष्ट हो जाएगा। ख्याल में आती है बात रेना बेन, कोई देखो कोई क्रोध के वेदक है ना उसके उदय से चढ़ेगा, कोई मान के उदय से, कोई माया के उदय से, कोई लोभ के, शुरू से जो माया के उदय से चढ़ा है उसका क्रोध का उदय होगा ही नहीं, मान का उदय भी नहीं होगा, यथायोग्य काल तक उसका बंध तो होगा, बाद में वो रुक जाएगा और सत्ता में जो निषेक है वो माया रूप से होकर नष्ट हो जाएगा, उसकी संग्रह पुष्टि भी नहीं बनेगी। माया के उदय से चढ़ने वाले के माया की तीन और लोक की तीन बनेगी और क्रोध मान उस रूप से हो जाएगी, यानी उसमें प्रत्येक में कुछ थोड़ा डिफरेंस। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि मान का जगन्य किसके होगा,
क्रोध या
या तो क्रोध से चढ़ाए, क्रोध से चढ़ाए फिर भी वो मान का उदय हो जाएगा, और शुरू से ही मान का उदय होगा तो कोई बात ही नहीं है, तो उसके अंतिम समय में उसका जघन्य होगा। प्रकृत जघन्य स्वामी तो होता है, ऐसा यहाँ कहना चाहिए। माया संजलन से जघन्य अनुभाग उदीर्ण कस, माया संजोलन की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। यहाँ भी ऐसा लेना, अब इसमें क्रोध मान या माया के उदय से चढ़ने वाले के अंतिम समयवर्ती माया वेदक वाला। खवगस्य चरिम समय माया वेदगस्य, अंतिम समयवर्ती माया वेदक शपक के होती है। यहाँ पर भी क्रोध मान और माया के उदय से श्रेणी पर शिरो बराबर करना। उष्ण जैसा दिखने श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के प्रकृत जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए। लोह संजलन से जघन्य अनुभाग उदीर्ण कस्य, लोह संज्वलन की जघन्य अनुभाग उदीर्ण किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। खवयस्य समयाहियावलिय चरिम समय कसायस्य, यह भी एक आवली अधिक एक समय लिया, एक समय अधिक आवली के उदीर्णा संबंधी अंतिम समय में। यहाँ उदीर्णा संबंधी अंतिम समय, उदय का अंतिम समय नहीं कहा, उदीर्णा का अंतिम समय। उदीर्णा संबंधी अंतिम समय में स्थित सकषाय क्षपक जीव के होती है, क्योंकि समयाधिक आवली के उदीर्णा संबंधी अंतिम समय में विद्यमान सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपक जीव के। सकषाय लिया ना, सकषाय क्षपक है ना, सूक्ष्म सांप्राय क्षपक जीव के सूक्ष्म कृष्टि स्वरूप अनुभाग उदीर्णा का अत्यंत जघन्यपना बन जाता है। दसवें गुणस्थान में आने पर सूक्ष्म लोग का उदय है, और वहां पर भी वो घटता चला जाता है, अनुभाग और जगह कम होते चला जाता है, अत्यंत हीन होते चला जाता है, और जो उदीर्णा संबंधी जो अंतिम समय है वहाँ उसका जघन्य उदीर्णा वाली बात चलेगी। बाद में उदय तो होगा, क्योंकि यहाँ तो उदय रूप से ही नष्ट होगा। हाँ, क्रोध वगैरह कैसे थे, अन्य रूप होकर उदय में आकर नष्ट हुए थे, संक्रमण होकर परोदय से नष्ट हुए थे, यहाँ वो स्वमुख से ही नष्ट हो गए। उदय होगा परंतु उदीर्णा एक आवली पहले रुक गई है।
तो उनकी ये क्रोध मान माया की, जब उदय उदीर्णा रुकी तो उदय भी खत्म हो गया।
हाँ, उसके उदय का अंतिम समय था,
और वो बादल दृष्टि हो गई या सूक्ष्म दृष्टि
ना, वहाँ भी कुछ, हाँ बादल कृष्टि थी, संग्रह कृष्टि थी, बराबर। इसकी सूक्ष्म होती है, लोग की मात्र सूक्ष्म होती है। हाँ,
बादल नंबर
हाँ, दो से तैयार हो गया, दो संग्रह कृष्ण नंबर दो लोक की। अभी अपना विषय नहीं हुआ यहाँ पर, पूर्व में जब हमने लब्धिसार पढ़ा था तब हुआ था, संग्रह संग्रह कृष्ण वगैरह आगे की पुस्तकों में शायद आएगा, अरविंद भाई को पता है सपना का,
सपना में हम लोग थे,
इसमें आएगी
नहीं, इसमें हम लोग जब भी
नहीं, पर नहीं इसके आगे भी आने वाली है ना,
15 नंबर की पुस्तक
मालूम है आपको,
उन्होंने बताया।
अच्छा ठीक है,
पढ़ा था मैंने,
अभी तो 11 चल रहे हैं ना। इति वेदस्य जहन्न अनुभाग उदीर्ण कस्य, ये चार संज्वलन हो गए, अभी वेदों की बात है। स्त्री वेद की जघन्य अनुभाग उदीर्ण किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। इति वेद खवगस्य समयाहियावलिय चरिम समय सवेदस्य, समयाधिक आवली के उदीर्णा विषयक अंतिम समयवर्ती, ये हर बार शब्द डाला उदीर्णा विषयक अंतिम समय। समयाधिक आवली के उदीर्णा विषयक अंतिम समयवर्ती सवेदी स्त्रीवेदी क्षपक के होते हैं। सवेद अवस्था में स्त्रीवेद सहित चढ़ने वाले के आवली और एक समय जब बाकी है तब होते हैं उदीर्णा, वहाँ उदीर्णा का अंतिम समय। उदय तो उसके जब तक सवेद है तब तक उसका उदय चलेगा। पुरी सवेदस्य जहन्न अनुभाग उदीर्णा कस्य, पुरुष वेद की जगन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? पुरी सवेद खवगस्त समया ही आवली चरिम समय सवेदस्त। समयाधिक आवली के उदीर्णा विषय अंतिम समयवर्ती सवेदी पुरुष वेदिक शपक की होती है। यानी सभी कंडीशन है, पुरुष वेद के उदय से ही चलने
एक
वाला
आवली प्लस एक समय
आवली सवेद अभी है, उसका वेद का उदय चल रहा है और आवली और एक समय बाकी है तो उदीर्णा का अंतिम समय है। नवंसे वेदस्य जघन्य अनुभाग उदीर्णा कस्य? नपुसक वेद की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? नवंसे वेद खवयस्य, यहाँ खवगस्य नहीं लिखा, खवयस्य लिखा, खवय भी आता है क्या शब्द पता नहीं, ग करके पेंसिल से प्रश्न चिन्ह करेंगे। नवंसे वेद खवगस्य समया ही आवली चरिम समय सवेदस्य। समयाधिक आवली के उदीर्णा विषयक अंतिम समयवर्ती सवेदी नपुसक वेदी क्षपक के होती है। ये सभी में वही से ही फॉर्मूला तो वही का वही है, अपने उदय से चलने वाले के क्षपक श्रेणी में
एक
आवली प्लस समय बाकी है तब उदीर्णा का वो अंतिम समय है, तब उसका जघन्य अनुभाग उदीर्णा होगी। ये सूत्र सुगम है क्योंकि अपने अपने उदय से शपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए समयाधिक आवली के उदीर्णा विषयक अंतिम समयवर्ती सवेद भाव को छोड़कर अन्यत्र इनकी उदीर्णा का जघन्यपना नहीं उपलब्ध होता। यानी किस रूप में यहाँ उदय में आ रहे हैं उसकी यहाँ जघन्य संज्ञा है, जघन्य होकर यहाँ उदीर्णा होकर जघन्य रूप से उसका उदय चल रहा है। बाद में उदय तो होगा, इससे भी जघन्य होगा, परंतु उसको यहाँ पर उदीर्णा नहीं कहेंगे। देखो ये क्रोधमान माया में तो उदय का अंतिम समय लिया, वही उदीर्णा का अंतिम समय था। लोभ में समयाधिकावली कही, तीन वेदों में भी समयाधिकावली कही। क्षण नो कषायाणम जघन्यानुभाग उदीर्णा कस्य? छह नो कषायों की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? यह सूत्र सुगम है। खवगस्य चरिम समय अपूर्व करणे वट्टमानस्य। अपूर्वकरण के अंतिम समय में विद्यमान क्षपक के होती है। प्रेरणा बेन ऐसा क्यों लिखा अपूर्वकरण में, अनिवृत्तिकरण में? हाँ ठीक है, परंतु इन्हें वो आठवा गुणस्था। हाँ अपूर्वकरण में क्यों लिया मंदाबेन आप कहेंगे? बाकी तो संज्वलन को वेद को तो ऊपर लिया, यहाँ क्यों लिया इसको? हाँ हाँ बोलो, किसकी बंद की के उदय की? उदीर्णा में क्या लगता है? उदय उदय की उच्चति है यहाँ। आठवें गुणस्थान में इनके छह नौ कषाय के उदय की उदीर्णा, उदय की विच्छित्ति, उदय की विच्छित्ति। छह नौकषाय के बंद की विच्छित्ति, बोलो बोलो
दो की छठे।
छह नौकषाय कौन से है?
हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा।
हास्य रति अरति शोक भय
जुगुप्सा,
अरति और शोक छठे गुणस्थान में।
और ये चार के आठवें,
ये चार
आठवें कर
किसवें भाग में?
सातवें भाग,
सातवें भाग में। अरविंद भाई क्या देख रहे
हैं? बराबर है ना?
हाँ बराबर
बराबर।
इसलिए अपूर्वकरण के अंतिम समय में विद्यमान क्षपक के होती है। यहाँ आवली और एक समय नहीं लिया है, अंतिम समयवर्ती लिया, क्योंकि अधस्तन समस्त विशुद्धियों से अनंत गुणी अपूर्वकरण के अंतिम समय में पाई जाने वाली विशुद्धि के कारण वहां पर इन कर्मों के उदीर्यमान अनुभाग का उदीर माने ने उदीर्णा होने वाला, यह उदीर्णा योग्य अनुभाग का अत्यंत जघन्यपना पाया जाता है। इस प्रकार ओग से जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ। अपूर्व करण आठवां गुणस्थान है यहाँ पर, यह मात्र करण परिणाम नहीं लेना है, कोई भी शपक अपूर्व करण है। यह शपक के बाद की ना, देखो अपूर्व करण अनिवृत्ति करण सूक्ष्म सांप्राय तो दोनों श्रेणियों में है, परंतु उपशम श्रेणी से क्षपक श्रेणी वाले जीवों की विशुद्धि ज्यादा है। कहीं पर भी अनिवृत्तिकरण में आप कहेंगे समान तो परिणाम होते, उपशम श्रेणी वाले के उपशम श्रेणी में समान परिणाम हो गए,
क्षपक के क्षपक,
परंतु क्षपक के साथ उपशम के साथ, पर उपशम के और क्षपक के समान नहीं हो गए। भले नौवा गुणस्थान दोनों को ही कहेंगे, हमने देख क्यों ऐसा किससे सिद्ध कर सकते आप,
क्योंकि वहाँ पे सपना नहीं होती है, यहाँ पे सपना होता है।
ऐसी बात नहीं है, हमने बंध के देखा था उपशम श्रेणी में भी क्रोध का बंध रुक जाता है, वहाँ पर उसका कितना बंध है, और क्षपक के जब क्रोध का बंध रुकता है वहाँ पर बंध कितना है, क्षपक के जितने उससे डबल, तो वहाँ का है। हाँ तो इससे क्या, वहाँ विशुद्धि कम है, क्षपक ही ज्यादा है, वहाँ स्थिति बंध भी कम होता है,
15-15 भी नहीं है ना,
है ना। अभी हमने कितने लोग चढ़ते
हैं, पर उत्सव श्रेणी तो 2-3 साल में एक बार होती है, ये तो 6-6 महीने में होती है, वर्ष पृथक
नाना जीवन की अपेक्षा बता रहे हैं,
और ये 6 महीने में हो जाती है।
देखो देखो यहाँ तो जघन्य हुआ, उत्कृष्ट भी देखा, तभी आदेश में जघन्य देखो। अब आदेश का कथन करने के लिए यहाँ उच्चारणानुगम को बतलाते हैं, यथा जघन्य का प्रकरण है, फिर दोबारा वो उच्चारणाचार्य ने भी ओघ से बताया, उसको भी बताएंगे आप। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से ये तो हमने अभी अभी देखा ही था, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, तो संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होती है। सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, समयाधिक आवली के उदीर्णा संबंधी अंतिम समयवर्ती अक्षीण दर्शन मोहनीय अक्षीण दर्शन मोही अन्यतर सम्यक दृष्टि के होती है। यानी यहाँ उदीर्णा का अंतिम समय है, कृतकृत्य वेदक का अवली और एक समय बाकी है, तब की बात। सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, सम्यक्त्व के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती अन्यतर सम्यक मिथ्या दृष्टि के होती है।
ये तो चारों गति में होगी ना।
हाँ चारों गति में होगी,
सम्यक्त्व की जघन्य उदीर्णा
सम्यक मिथ्यात्व की
नहीं, सम्यक्त्व की एक अवली प्लस एक समय वाली तो वो कोई भी गति में जा सकती
है। अप्रत्याख्यान कषाय चतुष्क की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती अन्यतर असंयत सम्यक दृष्टि के होगी। अब ये संयम तो मनुष्यों में होगा, तो ये मनुष्यों में ही घटित होगा। इसी प्रकार प्रत्याख्यान कषाय चतुष्क की अपेक्षा जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, अंतिम समयवर्ती संयता संयत के कहनी चाहिए। हाँ अन्य भी विशुद्धि, एक एक गुणस्थान की जनरल जो विशुद्धि है, हर एक चौथे गुणस्थान ही जनरल, अभी सम्यक तो प्राप्ति की बात नहीं है, तीर्यंचों में कितनी विशुद्धि से प्राप्त हो सकता है, मनुष्यों में कितनी विशुद्धि से, उसकी अपनी अपनी रेंज अलग है, और प्राप्त करने के बाद भी उनकी विशुद्धियों के जो स्थान है अलग अलग, हाँ वो भी अलग अलग है। अरे कंफर्ट से विशुद्धि होती है क्या, हाँ उल्टा करेंगे अभी उसको।
तो नरक को भी ज्यादा होनी चाहिए,
तो एसी में बैठने वाले को ज्यादा कम्फर्ट है, तो
मनुष्य की मतलब
वो विशुद्धि के स्थान है ना, उसके तो इस तरह से उसके तो जगन विशुद्धि में भी सम्यक्त होगा। दूसरी बात उस तरह से सोचो ना,
तो वही सब अपेक्षा तो सातवें नरक में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वहाँ पे तो बहुत
अनकम्फर्टेबल है। माय स्थिति से कुछ नहीं, जीवन की विशुद्धि उससे या क्या कहते हैं, इतनी विशेषता है कि अंतिम समय होती संयता संयत के कहनी चाहिए। क्रोध संज्वलन की जगन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? अंतिम समय में उदीर्णा करने वाले अन्य तक क्षपक की होती है, वो तो हमने देखा था, क्रोध से उदय से करने वाला वगैरह वगैरह। इसी प्रकार मान माया और लोक संज्वलन की अपेक्षा जानना चाहिए। इन्होंने तो सबको एक साथ बता दिया जो हमने विस्तार से देखा था पहले।
समय
लोग में तो समय अधिक अवधि दिया। पुरुष वेद की जगन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? समयाधिक आवली काल वाली प्रथम स्थिति की उदीर्णा करने वाले अन्यतर क्षपक के होती है। इसी प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेद की अपेक्षा जानना चाहिए। छह नौकाशयन की जगन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? अंतिम समयवर्ती सर्व विशुद्ध अन्यतर अपूर्व करण क्षपक के होती है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, जिसके जो वेद हो उसे जान लेना चाहिए। उदीर्णा उसकी होगी जिसका उदय चल रहा है, क्षपणा तो तीनों की होगी। क्षपणा में संक्रमण में तो तीनों को लेंगे हम, क्योंकि पहले नपुंसक वेद की क्षपणा हो जाएगी, फिर स्त्री वेद की होगी, फिर पुरुष वेद की होगी। परंतु यहाँ उदीर्णा की बात है, उदय तो किसी एक जीव को एक किसी वेद का उदय है। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व की जगन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? समयाधिकावली के उदीर्णा संबंधी अंतिम समय में उदीर्णा करने वाले प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख हुए अन्यतर नारकी के होती है। ओ,
ये पहली बार सम्यक्त्व प्राप्त करते उसकी बात है।
यहाँ समयाधिकावली लिया और वहाँ संयम के अभिमुख अंतिम समयवर्ती लिया था, मनुष्यों में लिया था, परंतु तो वहाँ कौन सा लेना था? वहाँ प्रथम उपशम नहीं लेना था? देखो यहाँ प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख हुए नारकी के, परंतु समयाधिकावली लिया है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अंतिम समय में उदीर्णा करने वाले के कहना चाहिए, क्योंकि इसका तो अंतर नहीं होता है ना। आगे देखेंगे अन्य गतियों में भी। वहाँ लिखा नहीं था, वहाँ पर वहाँ तो बस संयम के अभिमुख अंतिम समयवर्ती सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि इतना ही लिया। सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि अंतिम समय लिया था, और यहाँ आवली और एक समय लिया। तो अंतर नहीं होगा तो बिना अंतर का निवेदक होना चाहिए। प्रथम उपशम करेगा तो अंतर तो होगा ही,
वहाँ पे मेरे ख्याल से वेदक को लेना पड़ेगा। तो
तिरियंचो में क्या लिखा है? वहाँ भी अंतिम समयवर्ती लिया, नीचे से तीसरी लाइन, संयमासंयम के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती सर्व विशुद्ध अन्यतर मिथ्या दृष्टि तिरियंचो में, देवों में नारकियों के समान।
यहाँ पे नारकी और देव में अंतरकरण के वाला गया है, बाकी सब तो आई थिंक वेदक को लिया होगा।
वेदक को लिएंगे तो ही वो
घटित होगा,
कौन ऐसा क्यों? क्या विशुद्धि ज्यादा है? वेदक में ज्यादा होगा तो यहाँ पे भी चौथे में जाने वाला वेदक लेना था, यहाँ क्यों नहीं लिया?
और यहाँ तो प्रथम सम्यक,
प्रथम सम्यक तो कार्य होते प्रथम उत्तम।
अच्छा प्रथम उत्तम,
पर क्या लिया? अन्य तरह फल में समय सम्मानित समय आयावली चरम समय उदीर मानवस्य देखो ये प्रश्न तो अनुत्तरित रह गया, अंतिम समय क्यों नहीं लिया मिथ्यात्व में भी?
अंतिम समय में लेगा ना तो ही वहाँ पे उदीर्ण होगी, जिससे अंतरकरण नहीं किया है, क्योंकि अंतरकरण के पूर्व ही वो द्वितीय स्थिति का तो आगर प्रत्यागर रूप जाता है ना। एक
अंतिम समय में उदीर्ण होगी तो वहाँ पर वो तो वेदक समय को लेना पड़ेगा,
वेदक लेना पड़ेगा,
वेदक के साथ पांचवे में भी जाता है, वेदक के साथ वो संयम भी प्राप्त करता है, क्योंकि प्रथम ऑप्शन में तो उदीर्ण वहीं पर होगी।
हाँ। तो यहाँ पे ये जो प्रथम वेदक सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं लिया?
हाँ।
वो तो चौथे में ही जाने वाला है ना?
नहीं पर वो भी वेदक हो सकता है। अच्छा वेदक से वहाँ पे प्रथम ऑप्शन में
वह अंतिम समय तक उसकी विशुद्धि और बढ़ती होगी ना।
हाँ।
करण के साथ वेदक करने वाला, घात करके जो वेदक प्राप्त करता है।
हाँ, वहाँ पे दो दो करण होते हैं ना।
हाँ दो करण होते हैं वहाँ पर। अंतिम समय लिया उसका अर्थ है वहाँ
वेदक लेना,
अंतरकरण नहीं हुआ था।
नहीं हुआ।
वहाँ देखा
वो तो वेदक तो नरक वाले भी दो करण करके वेदक हो जाएंगे, दो करण की बात करते हैं।
उसकी विशुद्धि उतनी नहीं होगी क्योंकि ये ऊपर के गुण स्थान में जाने वाले की बात है ना। और वहाँ भी अपूर्व करण अनिवृत्ति करण तो होते ही है, वहाँ पर भी दो करण तो वहाँ पर भी हो गए ना।
एक ही मतलब सिर्फ पास होने के लिए सही नहीं है कि नरक और देव में संयम प्राप्त नहीं होता है।
बरो संयम 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 नहीं है,
है। यहाँ पर संयम 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 है।
हाँ।
तो उसकी विशुद्धि
के स्थान नहीं है।
वहाँ वेदक समय को के साथ होता हूँ अंतिम समय वर्ती लिया वहाँ। हाँ मनुष्य तीरेंचो में अंतिम समय वर्ती लिया है, तीरेंचो तो पांचवे में जाने वाला, मनुष्य में सातवें में जाने वाला। अब ऊपर पढ़ रहे हम आदेश में पांचवी लाइन में, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओग के समान है, क्योंकि सम्यक्त्व का भी कृत्य वेदक में आवली प्लस एक समय बाकी तब, समय मिथ्यात्व का तीसरे से चौथे में जाने वाले का अंतिम समय, बारह कषाय और सात नौ कषायों की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? अब यहाँ डिफरेंस होगा, अन्यतर सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि के होती है। बारह में किसको छोड़ा?
अनंतानुबंधी
अभी ऊपर देखा ना, मिथ्यात्व में से ऊपर जाने वाला गया, यानी यहाँ अनंतानुबंधी बिना यानी अभी ये सम्यक दृष्टि के ही इसका जघन्य होगा, क्योंकि ये तो उसका उदय मिथ्या दृष्टि के भी है, सम्यक दृष्टि के भी।
ये सर्व विशुद्ध तो कहाँ पे भी हो सकता है?
सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि अभी तो कहीं पर भी हो सकता है, उसकी विशुद्धि जब जब बढ़ेगी अधिक से अधिक। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए, दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? अन्यतर सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि के होती है। देखो सत्ता में तो उसका उत्कृष्टपणे पड़ा है, तो जघन्य उदीर्णा होगी उसकी, संक्रमण से होगी, क्या होगा? सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग सत्कर्म जो है वो तो उत्कृष्ट रहता है, अनलेस वो तो क्षपणा के काल में उसका अनुत्कृष्ट हो जाता है। परंतु यहाँ तो उदीर्णा की बात चल रही है। तिर्यंचों में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? संयमासंयम के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती सर्व विशुद्ध अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होती है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है। अप्रत्याख्यान कषाय चतुष्क की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? संयमासंयम के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती सर्व विशुद्ध अन्यतर वेदक सम्यक दृष्टि के होती है। यहाँ लिखा है आठ कषाय और नौ नौ कषायों की, इन्हें प्रत्याख्यान और संज्वलन, जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? सर्व विशुद्ध अन्यतर संयता संयत के होते हैं। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अपना अपना वेद जान लेना चाहिए। योनिनियों में सम्यक्त्व का भंग आठ कषायों के समान है, क्योंकि वहाँ कृतकृत्य वेदक नहीं है, तो आठ कषायों में सर्व विशुद्ध संयता संयत के होगा। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और मनुष्य पर्याप्तकों में मिथ्यात्व सोलह कषाय और सात नौ कषायों की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? अन्यतर तत्प्रायोग्य विशुद्ध के होती है, यानी उसके है तो मिथ्या दृष्टि परंतु जहाँ विशुद्ध परिणाम होगी वहां पर होगी। यहाँ विशुद्ध से कुछ मोक्ष मार्ग से कुछ लेना देना नहीं, संकलेश और विशुद्धि के परिणाम जहाँ वहाँ होते हैं मंदता के परिणाम, क्योंकि वहां सारी मिथ्या दृष्टि ही है। देवों में नारकियों के समान भंग है। प्रथम ऑप्शन वाला, इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद और पुरुष वेद का भंग बारह कषायों के समान है। हमने देखा ना, वो तो सम्यक दृष्टि सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि लिया था ना वहां पर, देवों में नपुसक वेद नहीं है। इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान कल्प में जानना चाहिए, इसी प्रकार सनत कुमार से लेकर नवग्रवेक तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वो विशेषता किया उन्होंने, विशेषता है कि इनमें स्त्री वेद नहीं है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में सामान्य देवों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व तो बह हुआ है, सम्यक्त्व का भंग बारह कषायों के समान है। सम्यक्त्व का भी जघन्य उदीर्णा कब होगी? सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि लेना हो, अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में।
नहीं, यहाँ पे तो प्रथम उपशम सम्यक्त्व में होगी ना, प्रथम सम्यक्त्व
क्यों?
भवन वासी
सम्यक्त का भंग चल रहा है।
ऑफ सम्यक्त सॉरी
प्रथम ऑप्शन में सम्यक्त की उदय उदीरना का
नहीं सॉरी सम्यक्त होता है।
ना ना उसके तो संकलेश हो गए
सर्व विशुद्ध
विशुद्धि के लेनी बात जहाँ विशुद्धि ज्यादा है तब सब लेना। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व बारह कषाय और सात नौ कषायों का भंग आनंद कल्प के समान है। आनंद का कहाँ अलग से बताया था?
बताया नहीं
वही लेना उसमें ज्यादा विशुद्धि जिसके
सामान्य की अपेक्षा लेना।
इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। चौथे में से ऊपर जाने वाला अंतर करता ही नहीं। चौथे में से प्रथम ऑप्शन पहले से सातवें में जाने वाला प्रथम ऑप्शन से वेदक की विशुद्धि ज्यादा है। चौथे में से सातवें में जाने के अपेक्षा पहले में से
नहीं पहले से चौथे में जाने की अपेक्षा भी
हाँ तभी तो वेदक लिया ना उसके
उनकी विशुद्धि
पर इनमें वेदक नहीं लिया देव और नारकी में वेदक नहीं लिया है।
पर ये गड़बड़ वाला है ना इसमें दोनों में वेदक लिया और उसपे प्रथम ऑप्शन वाला लिया तो विशुद्धि कहाँ पे ज्यादा सो देव और नारकी में
ऊपर के गुण स्थानों में जाने की अपेक्षा से वो लिया ऊपर के गुण स्थानों में वेदक के साथ जाता है उसकी बात वहां लिया।
नहीं मनुष्य में तो हमने ऐसा देखा ना कि अंतिम समय वर्ती समय मिथ्या दृष्टि
वही तो अंतिम समय वेदक में ही घटित होगा
वेदक। हाँ तो मिथ्या दृष्टि का जो चौथे गुण स्थान में जाने वाला है नहीं वो संयम की अपेक्षा लिया
संयम में जाने वाला लिया
ऐसे तो प्रथम वापसी की ज्यादा होगी पर जो ऊपर के गुण स्थान में जाएगा उसमें वेदक लिया है ना
अभी उसमें भी यथायोग्य होता होगा वेदक कब उसने प्राप्त किया अभी अभी समय को से गिर कर आया और फिर दोबारा किया उसमें बहुत सारी लगाने पड़ेगी ना कंडीशन। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब काल की बात करेंगे एक जीव की अपेक्षा काल का अधिकार कितना तीन नंबर है क्या अरे अरे तेरह तेरह हाँ स्वामी तो देखा था ना हमने बारह नंबर पर हाँ ये उत्कृष्ट और जघन्य दोनों देखा था हमने छियालीस पृष्ठ से देखा था। अब तेरह नंबर का नियोग एक जीव की अपेक्षा काल का अधिकार ऊपर एक जीवे न कालो एक जीव की अपेक्षा काल का अधिकार है यह सूत्र सुगम है क्योंकि इसका फल अधिकार की संभाल करना है। मिच्छत्तस्य उक्कस्य अनुभाग उदीरगो केवचिरम कालादो होदी मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का कितना काल है अब वो जगने का भूल जाओ पहले अभी उत्कृष्ट का सोचो
एक और दो समय
यह सूत्र हाँ सुगम है जघन्य ये समो जघन्य काल एक समय है यथा अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला संगी मिथ्यादृष्टि जीव एक समय के लिए उत्कृष्ट संकलेश परिणाम से परिणाम कर उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक हो गया। तथा दूसरे समय में उत्कृष्ट संकलेश के क्षय से अनुत्कृष्ट भाव को प्राप्त हो गया। इस प्रकार मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा का जघन्य काल एक समय प्राप्त हो गया। उक्कस्येन वे समया उत्कृष्ट काल दो समय है वे का बेक प्राकृत में क्या कहते हैं बी शब्द आता है ना द्वि के लिए, ये हिंदी वाले वक कहाँ भी करते हैं पता नहीं। हाँ, उत्कृष्ट काल दो समय है, शंका वह कैसे, समाधान अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक उत्कृष्ट सत्कर्म वाला जीव, यानी सत्ता में उसका उत्कृष्ट था ऑलरेडी और अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीर्ण कर रहा था, उत्कृष्ट संकलेश को पूरित कर दो समय तक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक हो गया। इसके बाद तदनंतर समय में संकलेश का क्षय होने से अनुत्कृष्ट भाव को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का उत्कृष्ट काल दो समय प्राप्त हो गया, क्योंकि उसके आगे उत्कृष्ट संकलेश के अवस्थान का अभाव है, यानी दो समय से ज्यादा उत्कृष्ट संकलेश अवस्थान नहीं है, उसका अवस्थित रूप से वैसे परिणाम दो समय से ज्यादा नहीं हो गए। ये बात सर्वोत्कृष्ट संकलेश परिणाम की बात है। सब में ये दो उत्कृष्ट का दो समय हमने सभी में देखा था, अनुत्कृष्ट उदीर्ण कर रहा था, सत्ता में लिया उत्कृष्ट वाला सत्ता,
वो तो सत्ता के वो तो
यहाँ उत्कृष्ट सत्ता था, उत्कृष्ट के
परमाणु
दोनों में तो उदीर्ण तो अनुत्कृष्ट कर रहा है, दूसरे में
हाँ उत्कृष्ट सत्कर्म वाला लिया है वहाँ पर अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्ण, क्योंकि उत्कृष्ट का सत्ता नहीं होगी तो दूसरे समय उसकी उदीर्ण कर सकता है ना। उत्कृष्ट के लिए दो समय के लिए उत्कृष्ट सत्ता वाला ऐसी कंडीशन डाली थी उन्होंने, ये बात हो रही वहाँ पर।
पर यहाँ पे भी जो पहले भी एक समय बताया वहाँ भी उत्कृष्ट सत्कर्म वाला ही लेना पड़ेगा ना,
पड़ेगा की बात नहीं है, पहले हमने कल ही पढ़ा था।
हाँ।
एक केंद्रीय से आया अनुत्कृष्ट उदीर्ण कर रहा है, फिर भी उत्कृष्ट संकलेश परिणाम से उत्कृष्ट की उदीर्ण कर सकता है,
तो ये दूसरे में दो समय वाले
में
दो समय वाले में उन्होंने उत्कृष्ट सत्कर्म।
अभी जो जो यहाँ कंडीशंस डाली है वो तो हम पढ़ के ही निर्णय करेंगे ना आगे, जब जब बात आ गई आगे, यानी अधिक से अधिक दो समय तक उसका उत्कृष्ट संकलेश परिणाम रहेगा, अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का कितना काल है ऊपर पढ़ा क्या, अनुकस्त अनुभाग उदीरगो केवचिरम कालादो होदी, अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का कितना काल है, मिथ्यात्व के इस प्रकार अधिकार का संबंध है अन्य कथन सुगम है, यानी मिथ्यात्व के ही अनुत्कृष्ट की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रकृति बात है, एक एक प्रकृति की बात चलेगी। जहन्येन एक समो, जघन्य काल एक समय है, यथा उत्कृष्ट स्थितिबंध के कारणभूत उत्कृष्ट अध्यवसान के असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध प्रायोग्य अध्यवस्थान स्थान होते हैं, यानी जो एक परिणाम जो उत्कृष्ट अध्यवसान बता रहे हैं जिसके कारण उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है, जिसको स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान कहेंगे,
असंख्यात लोक,
असंख्यात लोक मत कहो, उत्कृष्ट स्थिति बंध करने वाला उत्कृष्ट अध्यवसान लिया, एक लिया परिणाम, उसमें असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं, एक एक स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान में
असंख्यात लोक
असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं। अब वो स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होते वो एक समय की स्थिति बांधने के लिए होते, उसकी चर्चा यहाँ नहीं है, विशिष्ट एक ही स्थिति बांधने के कारणभूत स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होते उसकी बात नहीं है, परंतु सर्वोत्कृष्ट स्थिति बांधने वाला सर्वोत्कृष्ट स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान है, उस एक स्थितिबंध अध्यवस्थान में
अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान,
असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान होते हैं। पुनः वहाँ उत्कृष्ट अनुभाग बंद प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलेश से परिणाम कर उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला परिणामवश एक समय के लिए अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा कर फिर भी तदनंतर समय में उत्कृष्ट संकलेश की प्राप्ति होने से उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक हो गया। पहले बात आई थी कि अनुभाग अध्यवस्थान स्थान में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, एक समय में वो फिर उस संकलेश परिणाम को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ। शंका, उत्कृष्ट संकलेश से च्युत हुए जीव के अंतर्मुहूर्त करो, अनमुहूर्त हुआ है, अंतर्मुहूर्त हुए बिना एक समय के बाद ही पुनः उत्कृष्ट संकलेश की आपूर्ति कैसे संभव है, आपूर्ति यानी वहां प्राप्ति कैसे होगी, पूर्णता कैसे हो जाएगी, यहां ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। क्योंकि अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थानों में उस प्रकार का नियम नहीं स्वीकार किया गया। अब यह अनुत्कृष्ट जघन्य काल एक समय बताया, अनुत्कृष्ट का ही उत्कृष्ट काल बताएंगे। उक्कस्येन असंखेजा पोगल परियट्टा, उत्कृष्ट संकलेश परिणाम को प्राप्त ही नहीं होगा, एक इंद्रिय में ही रहेगा। तो कहते उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि पंचेंद्रियों में से एक इंद्रियों में प्रविष्ट हुए जीव के उत्कृष्ट संकलेश की प्राप्ति हुए बिना आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तनों में परिभ्रमण देखा जाता है। ये असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कहते हैं, उस असंख्यात का प्रमाण क्या है बंदा बेन? कितने असंख्यात बोलो, कितने असंख्यात 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 मयंक भाई, अभी हमने क्या पढ़ा? ये देखो, फिर आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तनों में परिभ्रमण देखा जाता है। हम असंख्यात असंख्यात कहते हैं, उस असंख्यात का प्रमाण कितना है? तो आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तन, हम हर जगह आवली का असंख्यात वे भाग लेते हैं ना। पुद्गल परिवर्तनों में भी आवली का असंख्यात वे भाग लिए। अब ये तो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट बात हो गई, उसका जघन्य उत्कृष्ट काल लिया, ख्याल में आया? मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय, अनुत्कृष्ट उदीरकों का जघन्य एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। सम्मतस्य उक्कस्य अनुभाग उदीरको केवचिरं कालादो होदि, सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। जघन्य उक्कस्येन एकसमो, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, क्योंकि मिथ्यात्व के अभिमुख हुए सर्व संकलेश परिणाम वाले असंयत सम्यक दृष्टि के अंतिम समय को छोड़कर अन्यत्र सम्यक्व की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा संभव नहीं है, वहां पर उसका संकलेश मैक्सिमम है चौथे से पहले में आने वाला जी। हाँ, परंतु उसके उदीर्णा में कोई अंतर है?
अंतर ज्यादा होगा ना,
सत्ता में तो अनुभाग, सत्ता का अनुभाग क्या है?
मैक्सिमम में
जो मैक्सिमम है उसको सत्ता का अनुभाग है, समझे? स्थिति सत्व किसको कहते हैं? सत्ता की स्थिति, तो सत्ता की स्थिति जितनी है उतनी कायम रहेगा, कब वो सब पॉसिबल है, जब उतना ही बंद होगा, वो अंतर्मूर्त तक होगा, अदरवाइज क्या होता है,
कम होता रहेगा, स्थिति कम
हर समय चलती। अनुभाग किसको कहना, सत्ता में पड़े हुए जो मैक्सिमम ऊपर वाला स्पर्धक है उसका जो अनुभाग है
वो सत्ता,
उसको सत्ता का अनुभाग कहेंगे, वो थ्रू आउट उत्कृष्ट ही रहेगा, परंतु उदय किस रूप में चलेगा, उदय कैसे होगा, जहाँ विशुद्धि ज्यादा है वहाँ उदय उसका
वहाँ पे कम
जघन्य रूप से चलेगा, जघन्य नहीं कहेंगे उसको हम, परंतु
अनुत्कृष्ट कम हो जाएगी,
अनुत्कृष्ट कहेंगे, अनुत्कृष्ट कहेंगे। हाँ? नहीं, जब तक वो स्पर्धकों का घात नहीं होगा,
कहाँ से उदीर्ण
अनुभाग भी उसका उदीर्णा में लेना है,
कहाँ से उदीर्ण हो रही है,
उदय रूप हो रहा है, किस रूप से उदय में आ रहा है, अन्यत्र क्या है, अनुभाग सत्ता का अनुभाग उतना ही रहता है, जब तक क्षपणा का कार्य शुरू नहीं होता तब तक, क्षपणा के काल में अनुभाग का कांडक घात होता है, जैसे स्थिति कांडक घात हमने विसंयोजना के काल में भी देखे थे समय प्रकृति के, और ऐसे भी उसकी स्थिति एक एक समय से तो घटती चली जाती है, अनुभाग में उसका अनुभाग सत्ता का अनुभाग
समान रहेगा,
क्योंकि उसका अंतिम स्पर्धक बना हुआ है वहां पर, उसी को सत्ता का अनुभाग कहेंगे, परंतु उसका उदय किस रूप में चल रहा है, उदय में आने वाला संकलेश वाले को
बड़ा में बड़ा,
यानी उसका उदय ने अधिक
कहाँ पे होगा,
घटे बिना उसका वैसा का वैसा उदय चलेगा, नहीं उदय समान नहीं है, सत्ता का अनुभव समान है,
वहाँ पे भी संकलेश वाले जीव को अनुभाग ज्यादा हो जाएगा और विशुद्धि वाले जीव का अनुभाग कम होगा,
कम होके उदय में आएगा, कम हो गया ने सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं है,
उदय में
सत्ता में परिवर्तन तभी होगा जब उसके कांडक घात होके सत्ता का अनुभाग कम होगा, यहाँ तो सत्ता का अनुभाग उतना रहते हुए भी उदय उदीर्णा किस फॉर्म में है उसकी बात चल रही है,
यहाँ पे जो सभ्य तो प्रकृति उद्वेलना होती है,
उदय कहाँ है वहाँ पर,
नहीं उदय नहीं है, पर उद्वेलना में भी उसका कांडक घात नहीं होता है ना, अनुभाग कांडक घात
नहीं, वहाँ तो उसके तो
अनुभाग की कम,
अनुभाग तो हमने वहीं पर, आपने पांचवा पुस्तक पढ़ा है ना, उसमें निकला है सम्यक प्रकृति का, हाँ लाया ना उसको, हाँ हम उन्हीं को पूछ रहे ना अभी, उद्वेलना में क्या हो रही है पोजीशन,
आप पढ़ के लाओ कल से,
हाँ देखो अभी ये समझ में आई ना बात, सत्ता में उसका थ्रू आउट उत्कृष्ट रहता है, अनलेस सपना का कार्य शुरू होता है तभी उसका तो अनुभाग घटेगा, सपना के काल में अनुत्कृष्ट होगा पहली बार, परंतु यहाँ उदीर्णा में जैसे उसकी विशुद्धि बढ़ेगी तो अनुभाग घटकर उदय में आएगा, उदीर्णा होकर उदय में आएगा, अनुभाग घटकर, क्योंकि सत्ता में तो उतना का उतना पड़ा है, उसमें तो कोई कटौती नहीं होगी, भले उदय कम होगा ज्यादा होगा फिर भी सत्ता का अनुभाग उतना का उतना रहेगा, क्योंकि स्पर्धक तो थ्रू आउट पड़े हैं ना सर्वत्र, किस रूप में उदय में आता है, तो घटकर उदय में आता है तो उसको कहेंगे उसकी उदीर्णा उस रूप से हो रही है, देखो प्रश्न भी उठते हैं ना उसमें अपना ही ज्यादा क्लैरिटी अपनी बढ़ती है, ये हो गया अपना, आगे अनुत्कृष्ट की बात करेंगे भी, अनुकस्स अनुभाग उदीरगो केवचिरम कालादो होती, यहाँ तो काल की बात चल रही है, अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है, जघन्येन अंतोमुहूर्तम, जघन्य काल अंतर्मूर्त है, यहाँ जघन्य उदीरक नहीं कहा, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात चल रही है,
नीचे तो मैं आने की अपेक्षा का है कि ऊपर के गुणस्तर में जाने की अपेक्षा।
अभी देखो जघन्य काल अंतर्मूर्त है, उपकस से ना
नहीं इसका ये
हाँ आगे वो क्योंकि वेदक सम्यक्तों को ग्रहण कर सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल द्वारा मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है। क्या कहना चाहते हैं? उत्कृष्ट कब है? मिथ्यात्व में जाने के पहले एक समय पूर्व, उस समय को छोड़ो और बाकी समय में क्या रहेगा?
अनुत्कृष्ट।
तो ये अनुत्कृष्ट का जघन्य काल।
यहाँ पे मिथ्यात्व में जाने के पहले उसका उत्कृष्ट ही होगा ऐसे नहीं है ना, कोई मध्यम परिणाम से मिथ्यात्व में जाएगा, अति संक्लेश से जाएगा तो उसका उत्कृष्ट हो जाएगा।
कैसे होगा? अंतिम समय में उत्कृष्ट, उदीर्णा की बात चल रही है अभी। अब यहाँ पर उसके सत्ता के अनुभाग की बात नहीं है, जो थ्रू आउट समान उत्कृष्ट ही रहता है।
हाँ।
फिर आप घोटाला कर रहे हैं।
नहीं नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये अंतर्मूर्त में एक समय कम करना जो काल सम्यक्त्व में रहने का है कि पूरा अंतर्मूर्त देने का, क्योंकि अंतर्मूर्त में उसका मध्यम संकलेश से भी वो मिथ्यात्व में जा सकता है।
हाँ जा सकता है।
हाँ तो पूरा अंतर्मूर्त ले सकते हैं,
तो उसको भी एक समय कम करे तो भी उसको अंतर्मूर्त तो कहेंगे
नहीं, बराबर है, पर पूरा अंतर्मूर्त लेगा तो भी कोई वांधा नहीं।
हाँ, यानी सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल द्वारा मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। अब उपकसेना अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल, उपकसेना छावट्टी सागरोमाने आवली योनानी, उत्कृष्ट काल एक आवली कम 66 सागरोपम है।
आवली क्यों कम थी?
हाँ आप ही बताओ, आवली कम क्यों कम थी?
वो तो सपना हो जाएगी वो पे।
हाँ, सपना हो जाएगी क्योंकि अभी पहले नीचे लाना है तो अंतर्मूर्त पहले लाना पड़ता।
हाँ।
यहाँ आवली ही कम कर दी, यानी पूरा 66 सागर वो सम्य दृष्टि रहा और सपना ही कर रहा है। तो यहाँ जगन्य को भी अनुत्कृष्ट कहेंगे ना।
हाँ।
तो जगन्य कब होता है? आवली प्लस एक समय,
एक
बाकी
समय तब तो भी अनुत्कृष्ट होते हैं,
तो इसलिए आवली को छोड़ा क्योंकि वहाँ अनुत्कृष्ट भी और उसके हीनता होते 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 जघन्य हो गया, परंतु यहाँ उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट इतनी दो ही अपेक्षा है, यहाँ उसको जघन्य की अपेक्षा नहीं लेनी है। जघन्य कहेंगे तो अजघन्य कहना और उत्कृष्ट का साथ अनुत्कृष्ट ही लगाना, तो थ्रू आउट वो अनुत्कृष्ट रहा और उसने क्षपणा की, यानी वो तो आवली छोड़कर उसकी उदीर्णा तब रुक गई ना, आवली और एक समय बाकी था तो वीरणा का अंतिम समय था, वो जघन्य भी उसका अनुत्कृष्ट ही कहलाएगा, इसलिए वो आवली कम 66 सागरोपम दिया। ये दो 66 सागर क्यों नहीं लिए?
बीच में तो सम्यक मिथ्यात्व में जाएगा ना।
हाँ, सम्यक में उसका उदय रुक जाएगा, यानी ये जघन्य को भी अनुत्कृष्ट लिया ना, इसलिए यहाँ एक आवली छोड़कर लिया, क्योंकि वेदक सम्यक्त्व के एक आवली कम उत्कृष्ट काल का प्रकृत उत्कृष्ट काल रूप से अवलंबन लिया है। शंका, एक आवली कम कैसे? 66 सागरोपम के अंत में अंतर्मूर्त शेष रहने पर दर्शन मौखिक सपना करने वाले जीव के सम्यक्त्व की प्रथम स्थिति के समयाधिक आवली मात्र शेष रहने पर सम्यक्त्व की उदीर्णा का पर्यवसान होता है, यानी उदीर्णा रुक जाती है, अंत होता है, नष्ट होता है, इसलिए एक आवली प्रमाण न्यूनता यहाँ पर जानना चाहिए। ये मैंने भी नहीं पढ़ा था, परंतु आवली क्यों कम की होगी इस तरह से सोचने से ख्याल आ जाता है। सम्मामिच्छत तस्य उपकस्य अनुभाग उदीरगम केवचिरम कालादो होदि, हमने उसका भी देखा था जब कब होता है मिथ्यात्व के सन्मुख वाला, तो एक ही समय होगा उसका भी। सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का कितना काल है? यह सूत्र सुगम है। जहन नुक्कस से नहीं, ये समय जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट संकलेश से मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले सम्यक मिथ्यादृष्टि के अंतिम समय में ही सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा देखी जाती है। संकलेश हुआ, अच्छा है संकलेश। सब लोग अभी प्रूफ रीडिंग अच्छा कर रहे हैं। अनुत्कर्ष अनुभाग उदीरगो केवचिरम कालादो होती, अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। जहन्नुक्कस्येन अन्तोमूर्तम्, जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। जघन्य भी अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट भी, क्योंकि इस गुणस्थान का काल ही अंतर्मूर्त है। क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का काल तत्प्रमाण होता है, उसमें भी काल में वेरिएशन होगी, जघन्य काल और उत्कृष्ट काल, फिर भी अपना अपना अंतर्मूर्ति कहलाएगा। शेषानम कम्मानम मिच्छत्त भंगो, शेष कर्मों का भंग मिथ्यात्व के समान है। मिथ्यात्व के समान क्या देखा था, उत्कृष्ट काल जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय, और बाकी अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। अब उसमें कोई वेरिएशन होगा तो बताएंगे। जिस प्रकार मिथ्यात्व के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव के जघन्य और उत्कृष्ट काल का कथन किया है, उसी प्रकार 16 कषाय और 9 कषायों का भी करना चाहिए।
इतना लंबा काल 16 कषाय में नहीं होगा ना, क्योंकि अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त होगा। एक कषाय का उदय का काल लेना पड़ेगा ना।
नीचे वो बताएंगे, यानी अपनी अपनी प्रकृति का उदय देखना उसमें, क्योंकि उसमें इसमें कोई विशेष इतनी विशेषता है। इन कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुत्कृष्ट हुए, अनुत्कृष्ट तो लगाना, इन कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक की उत्कृष्ट कालगत विशेषता है। अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल में डिफरेंस है, ये कहना चाहते, इसलिए उसके कथन करने के लिए कहते हैं नवरी। नवर यानी परंतु, इतनी विशेषता है। अनुकस्स अनुभाग उदीरग उपकस्स कालो पैड़ी कालो कादवो, इतनी विशेषता इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का उत्कृष्ट काल प्रकृति उदीरणा के उत्कृष्ट काल के समान करना चाहिए। इन प्रकृतियों की प्रकृति उदीरणा का जो उत्कृष्ट काल है, प्रकृतियों की प्रकृति उदीरणा, प्रकृति यानी पहले में पहले कहेंगे 16 कषाय या अनंतानुबंधी, फिर प्रकृति विशेष यानी क्रोध मान माया लोग, तो क्रोध का कितना काल है, मान का कितना, उसके अनुसार जो उत्कृष्ट काल है वही यहाँ पर अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का निरवशेष रूप से करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। प्रकृति उदीरणा, इन प्रकृतियों की प्रकृति उदीरणा, ये आगे के दो शब्द इकट्ठा कर दो, प्रकृति उदीरणा एक कर दो, तो इन प्रकृतियों की कौन कौन सी प्रकृतियां, 16 कषाय और 9 कषाय, इनमें जो प्रकृति उदीरणा का उत्कृष्ट काल है, प्रकृति उदीरणा का जो उत्कृष्ट काल है वो कैसे लेंगे हम।
वेद में फर्क पड़ेगा, बाकी तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त हो जाएगा।
हाँ, वेद में क्या फर्क पड़ेगा,
नपुंसक वेद का तो असंख्यात,
नपुंसक वेद के अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल
असंख्यात
असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, क्योंकि वहाँ उसी का उदय चलेगा।
पुरुष वेद
का
तीन पर्य ले सकते हैं,
क्यों, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल,
क्योंकि वहाँ पे तो उत्कृष्ट होगा ही नहीं तीन पर्य में, तो
तीन पल्ले में तो नहीं होगा,
साधिक तीन पल्ले तक नहीं होगा, साधिक तीन पल्ले लेना पड़ेगा।
तैतीस सागर क्यों नहीं?
अच्छा पुरुष वेद का, सॉरी
पुरुष वेद में तैतीस सागर।
अच्छा मैं मनुष्य की अपेक्षा,
और पुरुष वेद की काय स्थिति भी ले सकते हैं।
हाँ तो पर वो तैतीस सागर ज्यादा हो जाएगा।
क्यों? सौ सागर पृथक्त्व ज्यादा होगा क्या तैतीस सागर? पुरुष वेद की स्थिति लेना,
मैं मनुष्य की अपेक्षा सोच रहा।
एक किसी गति की काय स्थिति नहीं लेना, पुरुष वेद रहने में उसका उत्कृष्ट काल मार्गणा की अपेक्षा लेना।
पर पंचेंद्रिय में रहने के बावजूद भी इतना
पंचेंद्रिय में रहते हुए उत्कृष्ट नहीं किया संकलेश, ऐसा हो सकता?
अच्छा वो भी असंख्यात लोक प्रमाण,
असंख्यात लोक प्रमाण लिया था हमने।
स्त्री वेद में सौपल्य जिसमें सब सागर पृथक,
सौपल्य नहीं
पृथक पृथक सौपल्य
सौपल्य
और उसमें पृथक
सौपल्य और यहाँ पृथक सौसागर। देखो अब इस सूत्र के द्वारा सूचित हुए अर्थ का विवरण करने के लिए और आदेश का कथन करने के लिए यहाँ पर उच्चारणा का अनुगम करते हैं यथा, वो बताने ही वाले हैं। चलो अच्छा रहेगा ना, हमारी कहीं भूल होगी तो निकल जाएगी। काल दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, काल जघन्य और उत्कृष्ट ने उत्कृष्ट उदीर्णा का काल और जघन्य उदीर्णा का काल इस तरह से लेना उसका। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व और नपुसक वेद के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय। इनको इसलिए इकट्ठा लिया, उनका अनुत्कृष्ट का काल समान होगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। इसके साथ सोलह कषाय की इसलिए नहीं लिया, क्रोधमान मायालोक का उदय पलटता रहता है। इसी प्रकार सोलह कषाय भय और जुगुप्सा के विषय में जानना चाहिए। इसी प्रकार के लिए उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का जघन्य काल और उत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल ये तो समान होगा उनके लिए भी, परंतु इतनी विशेषता है इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार हास्य रति अरति और शोक की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल, अभी जहाँ उदय छह महीने का है वहाँ इसका अनुत्कृष्ट की उदीर्णा कराओ। हास्य रति का छह महीना तथा अरति और शोक का साधिक तैतीस सागरोपम है। साधिक क्योंकि जाने के पहले भी लेना है वहां पर। इसी प्रकार स्त्रीवेद और पुरुषवेद की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल क्रम से, यानी पुरुष स्त्रीवेद के लिए पहला नाम स्त्रीवेद का लिया है सौ पल्योपम पृथक्त्व और पुरुष वेद के लिए सौ सागरोपम पृथक्त्व। सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि हमने देखा था मिथ्यात्व के सम्मुख जीव लिया लास्ट में। इसलिए वो एक ही समय होगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल एक आवलिकम छियासठ सागरोपम है। जघन्य काल एक अंतर्मूर्त वेदक में रहने का मिनिमम काल लिया। सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, वो भी मिथ्यात्व के अभिमुख लेना। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, उस गुणस्थान का काल। विशेषार्थ सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक के जघन्य और उत्कृष्ट काल का स्पष्टीकरण चूर्णी सूत्रों में किया ही है, इसलिए अलग से खुलासा नहीं कर रहे। आगे चारों गतियों संबंधी उक्त काल का खुलासा भी सुगम है, इसलिए यदि कहीं किसी प्रकार का विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक होगा तो मात्र उसका अलग से निर्देश करेंगे। यानी अभी आदेश से बताने वाले हैं, उसका स्पष्टीकरण तो आ चुका है, जहां आवश्यक होगा वहां ये स्वयं टीकाकार करेंगे, ये विशेषार्थ लिखने वाले। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व, नपुसक वेद, अरति और शोक के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय। ये दो समय वाले उत्कृष्ट के लिए तो सब जगह है, अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल 33 सागरों को। अब नारकी लिया इसलिए साधिक नहीं कहेंगे उसको, इसी प्रकार 16 कषाय और 4 नौकषाय की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि पलटता है ना ये उदय सम्यक्त्व के, वो बराबर करना सम्यक्त्व, सम्त्व हुआ है, म को यह लगाना सम्यक्त्व। सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, मिथ्यात्व के सन्मुख वाला। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागरोपम, यानी वो सम्यक्त्व में रहने का उत्कृष्ट काल सातवें नरक में, वहां जाने पर सम्यक्त्व प्राप्त किया और फिर लास्ट तक रहा और अंतिम एक अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्यात्व में गया।
सम्यक्त्व के अनुत्कृष्ट का एक जघन्य एक समय किससे होगा,
बीच में एक समय के लिए उसने उत्कृष्ट किया।
उत्कृष्ट तो कभी होगा जब भी वो
अनुभाग के उदीरक का जग
मैं आगे का पढ़ रहा हूँ सॉरी।
सम्यक्त्व के अनुभाग के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है, बराबर है ना। अंतिम समय अंतर नहीं बता रहे, काल बता रहे।
अच्छा, एक समय के लिए उत्कृष्ट कभी होगा जो मिथ्यात्व के सन्मुख होगा,
उत्कृष्ट एक समय के लिए होगा।
हाँ।
अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागरोपम में। सर्व जगह लिया है ना उसका,
अनुत्कृष्ट का तो हमने अंतर्मुहूर्त लिया,
अंतर्मुहूर्त लिया था। यस,
तो यहाँ पे एक समय के लिए
सम्यक्त्व का हर जगह हमने कितना लिया था, एक अंतर्मूर्त ही लिया था ना जगन्य।
हाँ।
जगन्य काल अंतर्मूर्त लिया था। एक मिनट, ये कहाँ आया,
ये नरक पे है। अच्छा, समय तो का अनुत्कृष्ट का जो सपना कर रहा है,
सपना में ले रहे ना।
हाँ, हाँ। अनुत्कृष्ट
वो अंतिम समय में जगन्य हुआ।
हाँ।
उसके
नहीं, वो एक समय के लिए
वो जगन्य भी अनुत्कृष्ट कहलाएगा,
तो एक समय के लिए उसने दीड़ा की और पीछे,
मगर ये पहले नरक में घटित होगा।
हाँ, पहले नरक में घटित।
एक समय प्लस आउली, आउली वाला कृत कृत्य वेद। सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओक के समान है, इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, यहाँ लिखा ना कि सम्यक्त्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, यानी ये तो अंतर्मूर्त के लिए समय दृष्टि रहा, उसके काल दिया। इसी प्रकार पहली पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। अरति और शोक का भंग हास्य के समान है, अन्यत्र पहले से छठी पृथ्वी में वो अंतर्मूर्त वाला होगा, यानी एक समय से अंतर्मूर्त तक। तथा पहली पृथ्वी में सम्यक्त्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक का जघन्य काल एक समय है, वही जो हमने देखा था। समयाधिक आवली से यहाँ आया है वो विशेषार्थ। मात्र सातवीं पृथ्वी में अरति और शोक की अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा किसी नारकी के अपने पर्याय तक निरंतर होती रहती है, इसलिए वहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का उत्कृष्ट काल 33 सागरोपम कहा है। अन्य पृथ्वी में तो यह काल हास्य रति के समान ही यानी अंतर्मूर्त तक होगा, एक समय से लेकर प्राप्त होता है, इसलिए वहाँ उसे हास्य रति के समान जानने की सूचना की है। शेष कथन सुगम है, अब हम यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा।